हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 3। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मायं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्री गुरुः श्रीयुत पदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथं विदन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहकर्ण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति, गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानो सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। अध्याय 10 श्लोक संख्या 3। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, यो माम अजमनादिं च वित्ति लोक महेश्वरम असम्मूढः समर्थीषु सर्व पापै प्रमुच्यते। यो माम अजमनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढः समर्थीषु सर्व पापै प्रमुच्यते। यो माम अजमनादिं च वित्ति लोक महेश्वरम असम्मूढः समर्थीषु सर्व पापै प्रमुच्यते। शब्दार्थ, यो अर्थात जो माम यानी मुझको अजम अजन्मा अनादिम आदि रहित च भी वेत्ति जानता है, लोक लोक का महेश्वरम यानी स्वामी, असम्मूढः अर्थात मोहरहत सह वह मर्त येशु यानी मरणशील लोगों में सर्व पापाय समस्त पापों से प्रमुच्छियते मुक्त हो जाता है। अनुवाद, भगवान कहते हैं जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है वह मनुष्यों में केवल वही मोहरहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे, हम सब ध्यान से तात्पर्य को सुनेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जैसा कि सातवें अध्याय में 7.3 में कहा गया है, मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित् यतति सिद्धये। जो लोग आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ हैं जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता। किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं उनमें से श्रेष्ठ वही है जो जानता है, यह जानता है क्या, यततामपि सिद्धानां कश्चिन् माम वेति तत्वतः। तो भगवान ने जब सातवें अध्याय में बता दिया कि वैसे तो आत्म साक्षात्कार करने के लिए 100 में से कोई एक ही, 1000 में से कोई एक आगे बढ़ता है, लेकिन उनमें से भी जो मुझे जानता है वह सबसे श्रेष्ठ है। तो वही चीज यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं उनमें से श्रेष्ठ वही है जो यह जान लेता है कि कृष्ण ही भगवान है, प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा है, वही सबसे अधिक सफल आध्यात्म ज्ञानी है। जब वह कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह से समझ लेता है उसी दशा में वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर भगवान को अजक अर्थात अजन्मा कहा गया है, यो माम अजम अजन्मा, किंतु वे द्वितीय अध्याय में वर्णित उन जीवों से भिन्न हैं जिन्हें अज कहा गया है। भगवान जीवों से भिन्न हैं क्योंकि जीव भौतिक आसक्ति वश जन्म लेते तथा मरते रहते हैं। बद्ध जीव अपना शरीर बदलते रहते हैं किंतु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। यहाँ तक कि जब वे इस लोक में आते हैं तो भी वे उसी अजन्मा रूप में आते हैं। इसीलिए चौथे अध्याय में कहा गया है कि भगवान अपनी अंतरंग शक्ति के कारण अपराशक्ति माया के अधीन नहीं है अपितु पराशक्ति में रहते हैं। इस श्लोक में वेत्ति लोक महेश्वरम शब्दों से यह सूचित होता है कि मनुष्य को यह जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सभी लोकों के परम स्वामी हैं। वे सृष्टि के पूर्व थे, अपनी सृष्टि से भिन्न हैं। वे देवता, सारे देवता इसी भौतिक जगत में उत्पन्न हुए किंतु कृष्ण अजन्मा है। फलतः या वे ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवताओं से भी भिन्न हैं, और चूंकि वे ब्रह्मा शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के सृष्टा हैं, अतः वे समस्त लोकों के परम पुरुष हैं। अतएव श्री कृष्ण उस हर वस्तु से भिन्न हैं जिसकी सृष्टि हुई है, और जो उन्हें इस रूप में जान लेता है वह तुरंत ही सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि उन्हें केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है, किसी अन्य साधन से नहीं। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को सामान्य मनुष्य न समझे, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, केवल मूर्ख व्यक्ति ही उन्हें सामान्य मनुष्य मानता है। इसे यहाँ पर भिन्न प्रकार से कहा गया है, जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है, जो भगवान के स्वरूप को ठीक से समझ सकता है वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। यदि कृष्ण देव की पुत्र के रूप में विख्यात हैं, तो फिर वे अजन्मा कैसे हो सकते हैं? इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवतम में भी की गई है। जब वे देवकी तथा वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए तो वे सामान्य शिशु की तरह नहीं जन्मे थे, वे अपने आदि स्वरूप में प्रकट हुए थे और फिर एक सामान्य शिशु में परिणत हो गए थे। कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वह दिव्य है, वह शुभ या अशुभ फलों से दूषित नहीं होता है। इस जगत में शुभ या अशुभ वस्तुओं का बोध बहुत कुछ मनोधर्म है, क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है। प्रत्येक वस्तु अशुभ है, क्योंकि प्रकृति स्वयं ही अशुभ है। हम इसे शुभ मानने की कल्पना मात्र करते हैं। वास्तव में मंगल तो पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भावनामृत पर ही निर्भर करता है। अतः यदि हम तनिक भी चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हों, तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना होगा। ऐसी आज्ञा श्रीमद् भागवतम तथा श्रीमद् भगवत गीता जैसे शास्त्रों या प्रामाणिक गुरु से प्राप्त की जा सकती है। चूंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है, अतः उसकी आज्ञा प्रत्यक्ष परमेश्वर की आज्ञा होती है। गुरु, साधु तथा शास्त्र एक ही प्रकार से आज्ञा देते हैं। इन तीनों स्रोतों में कोई विरोध नहीं होता। इस प्रकार से किए गए सारे कार्य इस जगत के शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त होते हैं। कर्म संपन्न करते हुए भक्त की दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य की होती है, जिसे संन्यास कहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय के 1 श्लोक में कहा गया है कि जो भगवान का आदेश मानकर कोई कर्तव्य करता है और जो अपने कर्म फलों की शरण ग्रहण नहीं करता है, अनाश्रित्य कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह सन्यासी च योगी च न अग्निर्न चाक्रिया। यानी वह असली सन्यासी है जो भगवान के निर्देशानुसार कार्य करता है। वास्तव में सन्यासी तथा योगी वही है। केवल सन्यासी या छद्म योगी के वेश में रहने वाला व्यक्ति नहीं है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति किरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। श्रीमद्भगवद्गीता मात्र की जय हो। श्रीमद्भगवद्गीता का 10वां अध्याय विभूति योग, परम सत्य की विभूतियां, यानी श्री भगवान का ऐश्वर्य। भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम फिर से सुनो, क्योंकि अब मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ वो तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारी हित की कामना करता हूँ। हित कामया, मेरी इच्छा है कि तुम्हारा कल्याण हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और फिर दूसरे श्लोक में कहा, नमे विदुसुरगणा प्रभवम न महर्षय, मुझे कोई जान नहीं सकता क्योंकि मैं अहम आदिर ही देवानाम, मैं तो देवताओं का और महर्षि राम च सर्वशः, देवताओं और महर्षियों का आदि हूँ, उनका कारण हूँ, तो फिर वो मुझे सब नहीं जान सकते, चाहे वो देवता और महर्षि ही क्यों न हो, वो नहीं जान सकते। लेकिन जानना कितना आवश्यक है और क्यों आवश्यक है वो भगवान आज बता रहे हैं। भगवान कहते हैं, यो माम अजनम अजम अनादिम च, यो माम, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं माम, सामने अर्जुन के वह कृष्ण खड़े हैं जो देवकी के पुत्र हैं, है ना। वो कृष्ण अपने ऊपर इशारा करते हैं, यो माम अजम, जो मुझे अजन्मा जानता है। अब यहाँ पर प्रश्न करेंगे ना अर्जुन कि मुझे क्या पता नहीं है कि तुम मेरी बुआ के पुत्र हो। भगवान अर्जुन कह सकते हैं ना कृष्ण से, ये तुम कैसे कह रहे हो कि तुम अजन्मा हो, तुम तो देवकी के पुत्र हो, वही कृष्ण हो ना जो जेल में जन्मे थे और फिर वासुदेव उन्हें मथुरा से गोकुल में लेके गए थे, तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम अजन्मा हो, तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम तो मेरी, आगे कहा था ना फोर्थ चैप्टर में अर्जुन ने कृष्ण से कहा था कि अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्तुतः कथमेतद् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तम वाणीति परम भवतो जन्म परम। ये जो हम तो अभी उत्पन्न हुए हैं, परम जन्म विवस्वते, और विवस्वान ने तो बहुत पहले जन्म लिया था, फिर मैं कैसे मानूं कि आपने उसको ज्ञान दिया था। तो आज भी अर्जुन यह प्रश्न कर सकते हैं कि आप तो देवकी के पुत्र हो, फिर आप कैसे कह सकते हो कि मैं अजन्मा हूं। लेकिन भगवान का जन्म लेना और हमारा जन्म लेना वो सेम नहीं है। श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यहाँ पर भगवान को अज अर्थात अजन्मा कहा गया है, किंतु वे द्वितीय अध्याय में वर्णित जीवों से भिन्न है। सेकंड चैप्टर में भगवान ने जीवों को भी अजन्मा कहा था। 2.20 में भगवान कहते हैं, न जायते मिर्यते वा कदाचिन्नायम् भूत्वा भवितावान भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमानेश अजो नित्यः। वो भी अज हैं और भगवान कहते हैं मैं भी अज हूँ, परंतु श्री प्रभुपाद जी ने बोला भले ही दोनों अज हैं, अज माना अजन्मा, आत्मा का भी कभी जन्म नहीं होता, वो भी अनादि है, और भगवान का भी कभी जन्म नहीं होता, लेकिन वो भिन्न कैसे हैं कि जीव जो है वो अपने कर्मों के कारण जब वो इस भौतिक जगत में आ जाते हैं तो भौतिक आसक्ति वश जन्म लेते हैं, मतलब जिस वस्तु के अंदर उनकी आसक्ति हो जाती है फिर वो उसी के अनुसार दूसरा जन्म लेते हैं। जैसे हमने चैप्टर में ईच में भगवान ने बताया था, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वायति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। मृत्यु के समय जिस भाव का स्मरण करते हैं वैसा जीवों को वैसा ही जन्म मिलता है जैसा कि वो मृत्यु के समय स्मरण करते हैं। लेकिन भगवान का जन्म ऐसे नहीं होता है, भगवान तो अपनी इच्छा से भौतिक जगत में आते हैं, भगवान इस भौतिक प्रकृति के वशीभूत नहीं है, बल्कि यह भौतिक प्रकृति भगवान के कंट्रोल में है। तो भगवान का जन्म हम जैसी तरह, जैसे हम हमारे कर्मों के अनुसार एक माता का गर्भ जो है वो डिसाइड किया जाता है कि अब की बार इस जीव आत्मा को इस माता के गर्भ में डाला जाएगा, फिर वो माता मनुष्य भी हो सकती है, पशु भी हो सकती है, पक्षी भी हो सकती है, सबको देखो बच्चे पैदा होते ना, तो वो वही जीव आत्मा होती है जो पहले हो सकता है मनुष्य बना हो, आज कोई उसको है ना गधा बनना पड़े, हो सकता है मनुष्य बना हो लेकिन उसके करतूत ऐसे खराब हो कि उसको कुत्ता बनना से पड़े या कॉकरोच बनना पड़े। 84 लाख योनियों में हर एक योनि में, यानी कि जैसे भी हमारे करतूत होंगे उसके अनुसार हमें भेज दिया जाता है, और इस तरह से ये सर्कल चलता रहता है। तो हम अपने कर्मों के वशीभूत होकर इस भौतिक जगत में आते हैं, लेकिन भगवान के विषय में भगवान तो अपनी इच्छा से भौतिक जगत में आते हैं। श्रीमद् भागवतम का यहाँ पर बहुत ही सुंदर उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण को इस भौतिक जगत में आना था, तो ऐसे जिस तरह से साधारण व्यक्ति जो है वीर्य से उत्पन्न होते ऐसे नहीं, वासुदेव के हृदय में भगवान आए सबसे पहले, वासुदेव जी के हृदय में, और वो भी क्यों, वही गर्भ या वही पिता क्यों चुने भगवान ने, क्योंकि वासुदेव और देवकी पिछले जन्म में द्रोण और दरा के नाम से दो व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत बहुत तपस्या की थी भगवान की, और उन्होंने भगवान से यह वरदान मांगा था कि हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान को क्योंकि भौतिक जगत में आना था, और दूसरी बात कि भगवान के जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं, तो भगवान ने उन्हीं को यहाँ वरदान दिया कि हाँ अब की जब मैं आऊंगा तो मैं आपका पुत्र बनूंगा। तो भगवान ने वह गर्भ डिसाइड किया था, भगवान ने ये डिसाइड किया था कि मैं देवकी को अपनी माता बनाऊंगा। हम कभी भी इस भौतिक जगत में आने से पहले ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं इस माता का पुत्र बनना चाहता हूँ और इसी माता के पास मैं चला जाऊं। वो तो हमारे करतूत के अनुसार हमें जबरदस्ती भेज दिया जाएगा, लेकिन भगवान जब आते हैं वासुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में प्रकाशित होते हैं। जब देवकी के हृदय में भगवान आते हैं तो देवकी की आभा, देवकी का तेज इतना बढ़ जाता है और सारे देवी देवता, जितनी भी देवी देवता हैं, वो वहां पर जेल में आते हैं भगवान की स्तुति करने के लिए। और तब भगवान जो है वो देवकी के हृदय से प्रकट होते हैं। जिस तरह से हम साधारण मनुष्यों का जन्म होता है, उस तरह से भगवान का जन्म नहीं होता। और भागवत कहती है उस समय जब भगवान देवकी के समक्ष आते हैं तो वो चतुर्भुजी स्वरूप में होते हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे होते हैं। देवकी उनको देखकर आश्चर्यजनक हो जाती है, बोलती है आपको मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे आप ऐसे भगवान बन के मेरे पास आना, मैंने ये कहा था मेरे पुत्र बन के आना, आप तो भगवान जैसे ही बने हो। तुम बोला मैं अभी छोटा तो हूँ, देखो छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे शंख चक्र गदा है। तो बोला छोटे तो हो मगर साधारण मनुष्य के दो हाथ होते हैं, आप अपने दो हाथ बना लो। तब बोला अच्छा ठीक है मैं दो हाथ काम कर लेता हूँ, फिर चलेगा। फिर भगवान ने अपने दो हाथ काम कर दिए। फिर उसके बाद भी वो हंस रहे थे तो बोला देवकी ने ऐसे नहीं, जब मनुष्य कोई भी बच्चा उत्पन्न होता है तो रोता है, आपको थोड़ा रोना चाहिए, रो के दिखाओ। फिर भगवान रो जाते हैं क्योंकि भगवान जो है वो अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और उन भक्तों को आनंद देने के लिए इस भौतिक जगत में आते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं अजन्मा हूँ, अनादिम, मेरा कोई आदि नहीं है। जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं कि ईश्वरा परमः कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद, भगवान का कोई आदि नहीं है। और वेत्ति लोक महेश्वरम, और जो मुझे अजन्मा जानता है, अनादि जानता है और लोक महेश्वरम, यानी कि मैं ही इस पूरे संसार का, लोक मना इस सारे लोक का या संपूर्ण लोकों का, लोक महेश्वरम। ये भगवान, जैसे हमने श्रीमद् भागवतम में आता है कि भगवान के जब वो सांस लेते हैं तो उनकी सांस लेने के समय उनके रोम कूपों से अनेकानेक ब्रह्मांड निकल रहे होते हैं, अनेक ब्रह्मांड निकलते रहते हैं और हर एक ब्रह्मांड के अंदर भगवान जो है वो गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई रूप विष्णु के रूप में आते हैं, इस भौतिक जगत का ब्रह्मा जी के द्वारा सृजन करते हैं और फिर अपने विष्णु स्वरूप में उसका पालन करते हैं। और फिर एक समय आता है जब वो कारण दक्षाई विष्णु श्वास अंदर डालते हैं तो वही भगवान जो है वो शिव जी के द्वारा प्रलय करा देते हैं। तो ये समस्त लोकों का, एक ही नहीं, हम लोग समझते हैं हमारा एक लोक है, उसके लिए भगवान कहते हैं माया अधिक्षण प्रकृति, मैं इस पूरी प्रकृति, ये प्रकृति में एक ब्रह्मांड नहीं है, करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड हैं। और वो भगवान सोते सोते उन समस्त ब्रह्मांडों को कंट्रोल में कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, कोई उनको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ रही है, एकदम आराम से लेट कर सारे ब्रह्मांडों का जो है वो नियंत्रण कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान एक बात बता रहे हैं, वेत्ति लोक महेश्वरम, जो ये जानते हैं कि मैं समस्त लोकों का महेश्वर हूँ। असमूढ़, वो मूढ़ नहीं है, असमूढ़ मतलब वो मूढ़ नहीं है, मोहरहत है। तो मोहरहत कौन है? मोहरहित है, तो मूढ़ कौन है? फिर भगवान ने 9.11 में बताया था, याद है जब भगवान ने कहा अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जो मूड होते हैं उनकी पहचान क्या है कि वो मुझे नहीं जानते। अवजानन्ति माम मूढ़ा, कब नहीं जानते, मानुषीम तनु आश्रितम। वो जब मैं मनुष्य देह में आता हूँ तो वो मुझे ये सोचते हैं कि मैं जो हूँ वो साधारण हूँ, इसलिए वो उपहास करते हैं। अब यहाँ पर इस श्लोक को लेकर कोई ऐसे बोलेगा ना, जैसे भगवान ने कहा यो माम अजमनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम। वास्तव में ज्ञानी वही है जो मुझे अजन्मा जानता है, अनादि जानता है, समस्त लोकों का स्वामी जानता है, निराकार जानता है, क्योंकि साकार का तो जन्म होता है। लेकिन भगवान ने इस बात को यहाँ पहले ही क्लियर कर दिया है कि मेरा जब इस भौतिक जगत में जन्म होता है तो वो साधारण नहीं होता है। मेरा जो जन्म होता है वो वास्तव में आध्यात्मिक होता है। भगवान श्री कृष्ण जो इस भौतिक जगत में आते हैं तो उनका जो देह होता है हमारी तरह भौतिक नहीं होता है। इसलिए तो भगवान ने कहा कि मानुषीम तनुमाश्रितम, जब मैं मनुष्य देह धारण करता हूँ तब जो मेरा उपहास करते हैं वे मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं कि मैं समस्त लोकों का महेश्वर हूँ। और आज भगवान उसी बात को बता रहे हैं जैसे श्री प्रभुपाद जी ने बताया कि अतएव श्री कृष्ण हर उस वस्तु से भिन्न है जिसकी सृष्टि हुई है, और उन्हें इस रूप में जान ले, जो उन्हें इस रूप में जान लेता है वह तुरंत ही सारे पाप कर्मों से मुक्त होता है। और आगे यही चीज श्री प्रभुपाद जी ने सेकेंड पैराग्राफ थर्ड पैराग्राफ में बताइए कि मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को सामान्य मनुष्य न समझे। कृष्ण का जो शरीर है वो कोई साधारण नहीं है, जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, केवल मूर्ख ही उन्हें मनुष्य मानता है। इससे यहाँ भिन्न प्रकार से कहा गया, मतलब वही बात बताई जा रही है, ये बात दूसरी नहीं बताई जा रही है कि भगवान निराकार है। वही बात जो पहले बताई गई, अवजानन्ति माम मूढ़ा, जो मुझे नहीं जानते हैं मेरा उपहास करते हैं वो मूढ़ हैं, और जो वेत्ति लोक महेश्वरम, जो मुझे जान जाते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, अनादि हूँ और लोक का महेश्वर हूँ, वो असम मूढ़ हैं। यानी कि वही चीज को भगवान ने यहाँ पर और क्लियर करके बताया कि वास्तव में बुद्धिमान वही व्यक्ति है जो मुझे अजम अनादि तथा समस्त लोकों का महेश्वर जान लेते हैं। अभी जैसे भगवान श्री प्रभुपाद जी ने 7.3 में बताया, जैसे 7.3 में भगवान ने कहा था कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धः। वैसे तो संसार में करोड़ों करोड़ लोग हैं, लेकिन वो सब सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं, कैसे हम इस भौतिक जगत में आनंद को प्राप्त करें। भौतिक जगत में आनंद नहीं है क्योंकि भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं। श्रीला प्रभुपाद जी ने तो यहाँ तक कह दिया, यहाँ भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु अशुभ है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़त्वच। मंगल यदि कोई है, शुभ यदि कोई है, तो भगवान है। भगवान का नाम है, भगवान की कथा है, भगवान का लोक है, भगवान का सानिध्य है। भगवान से भिन्न कोई वस्तु शुभ हो ही नहीं सकती, वो कभी किसी जीव का कल्याण कर ही नहीं सकती। इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने बताया क्योंकि भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है, प्रत्येक वस्तु अशुभ है, क्योंकि प्रकृति स्वयं ही अशुभ है। हम इसे शुभ मानने की कल्पना मात्र करते हैं, वास्तव में मंगल तो पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भावनामृत पर ही निर्भर है। मंगल क्या है कि हम भगवान की भक्ति करें, भगवान की सेवा करें, भगवान की कथाओं को श्रवण करें, भगवान के पवित्र नाम का जप करें, उसी से वास्तव में कल्याण संभव है। क्योंकि इस भौतिक जगत में जो वस्तुएं हम मानते हैं कि ये हमारे कल्याण के लिए हैं, लेकिन वास्तव में वही वस्तुएं हमारे लिए कष्ट प्रदत्त हैं। क्योंकि 5.22 में भगवान ने कहा ये ही संस्पर्श लाभ होगा दुख योनय एवते। वो तो जो वस्तुएं जो आप अपने भोग के लिए इस भौतिक जगत में प्राप्त करने के लिए इतना प्रयत्न कर रहे हो, वो वस्तुएं तो आपके कष्ट का ही कारण बनने वाली है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पुत्र हो, चाहे पत्नी हो, चाहे घर हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कुछ भी हो। जिस भी वस्तु को, जिस भी व्यक्ति को आपने इस भौतिक जगत में बड़ी कठिनाई से प्राप्त किया है, उसी के द्वारा आपको दुख मिलना है। आप मानो या ना मानो, ये भगवान का स्टेटमेंट है। आनंद यदि कहीं से संभव है तो केवल सच्चिद आनंद भगवान के पास से है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि यो माम अजमनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम, जो मुझे जान लेता। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्योंकि भगवान ने कहा है कि वेत्ति लोक महेश्वरा, कि मनुष्य को यह जानना चाहिए कि कृष्ण ब्रह्मांड के सभी लोकों के स्वामी हैं। वे सृष्टि के पूर्व थे, अपनी सृष्टि से भिन्न हैं। सारे देवता इसी भौतिक जगत में उत्पन्न हुए किंतु कृष्ण अजन्मा है, फलतः वे ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं के से भिन्न है। और चूंकि वे ब्रह्मा शिव अन्य देवताओं के सृष्टा है, अतः वे समस्त लोकों के परम पुरुष है। तो जीव को यदि जानने के लायक कुछ है तो यही जानने के लायक कुछ है। क्या? कि भगवान अनादि है, भगवान का कोई आदि नहीं है, भगवान अजन्मा है। सारे जितने भी देवता हैं, जितने भी महर्षि हैं, शिव ब्रह्मा सब भगवान से प्रकट हुए हैं, और समस्त लोक जो हैं वो उनका स्वामी भगवान है। वास्तव में यही जानने के योग्य है, और कुछ जाना या ना जाना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे वो सब जानकर आपका कल्याण नहीं होगा। तो मानो पूछा जाए कि फिर भगवान के विषय में जानकर क्या हमें प्राप्त होगा, अगर जान भी लें भगवान के विषय में तो क्या लाभ होगा। अब भगवान बताएंगे कि मुझे जानने के बाद लाभ क्या होगा। भगवान कहते हैं समर्थेषु असमूढ़ समर्थेषु। अभी देखो, मर्तेषु का मतलब होता है मरणशील लोग। हम जो जीव हैं, जो नित्य भद्ध हैं, सदैव इस भौतिक जगत में आते हैं। जिस दिन हमारा जन्म होता है उस दिन एक ही बात नक्की होती है कि इस व्यक्ति को मरना है। बस आप जिस दिन जन्म लिए थे ना, उस दिन ये बात निश्चित हो गई थी कि आपकी मृत्यु होगी। इसके अलावा और कोई चीज निश्चित नहीं थी कि आप डॉक्टर बनोगे या नहीं बनोगे, आप इंजीनियर बनोगे या नहीं बनोगे, आप स्टडी करोगे या नहीं करोगे, बिजनेस करोगे या नहीं करोगे, आपका एक अच्छा घर होगा या नहीं होगा, शादी होगी या नहीं होगी, बच्चे होंगे, कोई भी बात नक्की नहीं है। एक ही बात कन्फर्म्ड है हर उस व्यक्ति के लिए जो इस भौतिक जगत में है, भौतिक जगत के किसी भी ब्रह्मांड में आया है तो उसे अवश्य जाना होगा। इसलिए भगवान ने नाम लिखा समर्थेषु, कि वह मरणशील व्यक्ति है, अवश्य मरेगा और मरने के बाद पुनः जन्म भी लेगा। भगवान ने कहा जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है और जिसकी मृत्यु होगी उसका जन्म भी भावी अवश्यंभावी। तो सबसे बड़ी जीव की प्रॉब्लम ये है कि मैं कैसे अपने इस मरण को रोक सकूं। मरण को तभी रोका जा सकता है जब जन्म को रोका जाए, क्योंकि यदि जन्म हो गया है, अब हम सबका जन्म हो गया है, तो हम मरने से नहीं बच सके। आपको याद है आपने कभी अपने जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति देखा हो जो 500 साल का हो, 600 साल का हो गया हो, अभी तक उसकी मृत्यु नहीं आई हो, चाहे वो कितना ही बलशाली क्यों न हो, कितना ही ज्ञानवान क्यों न हो, बड़े से बड़ा डॉक्टर क्यों न हो, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट क्यों न हो, क्या कभी ऐसा कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत में है जिसको मृत्यु ना मिली हो? शास्त्र तो यहाँ तक कहता है राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कहे नानक फिर कुछ नहीं सपने ज्यो संसार। ये सपने की तरह है, ये संसार जो है वो इस जैसे जब हम सपना देख रहे होते हैं तो सपने में हो सकता है एक किसी को बहुत बड़ी लॉटरी लग गई हो, उसको एक उसने अपनी लॉटरी से बहुत अच्छा घर बनाया हो, बहुत अच्छा बंगलो बनाया हो और गाड़ियां खरीदी हो, बहुत सारे नौकर हो उसके पास और बहुत सारा धन भी हो, बहुत सारी ज्ञान भी प्राप्त किया हो, विवाह किया हो, सुंदर स्त्रियां हो, बच्चे हो, बहुत अच्छे आज्ञाकारी हो सब। लेकिन यदि वो सब तुमने सपने में प्राप्त किया तो क्या लाभ है ना? अभी आंख खुलेगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा, वही गरीब का गरीब रह जाएगा है ना? तो वास्तव में यह जगत जो है वो सपने की तरह है। इस भौतिक जगत में जो भी आपको प्राप्त होता है वो सपने की तरह है, लेकिन इस जगत में अगर कुछ हकीकत है तो वो ये कि आप आए हो तो एक दिन आपको यह जगत छोड़ के जाना है। तो इसे भगवान ने यहाँ बताया सब मर्त्येषु। अब मरने के लिए मैंने आपको जैसे हमने अभी बात की कि मरने से यदि हमें बचना है तो उससे उसके लिए जन्म लेने से बचना पड़ेगा, और जन्म लेने से यदि बचना है तो अपराधों से मुक्त होना पड़ेगा, है ना। यदि हम अपने अपराधों से मुक्त हो जाएंगे, भौतिक जगत में आने का कारण क्या है, इस भौतिक जगत में दुखी होने का कारण क्या है, बारंबार जन्म मरण के चक्कर में फंसने का कारण क्या है, हमसे अपराध हुआ शुरू से लेकर पहले दिन अपराध हुआ, भगवान तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहते, तुम्हारी सेवा नहीं करना चाहते, भगवान ने बोला निकलो आप जाओ दूसरी जगह पर, मेरे घर में क्या करोगे रहकर, जब तुम मेरी आज्ञाओं का पालन ही नहीं करना चाहते, मेरी सेवा ही नहीं करना चाहते, जाओ मजा करो अपने भौतिक जगत में जाओ। और उस दिन से लेकर जब से हम इस भौतिक जगत में आए हैं तो भौतिक इच्छाओं और कामनाओं को पूरा करते करते करोड़ों अपराध कर रहे हैं। एक अपराध से बचने के लिए दूसरा अपराध, तीसरा अपराध, ऐसे करते 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 सबसे बड़ा अपराध क्या है जानते हो? सबसे बड़ा अपराध है भगवान की भक्ति न करना। इससे बड़ा अपराध और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान को जब हम सरेंडर नहीं करते हैं तो यही सबसे बड़ा अपराध है। एक जीव आत्मा का फर्स्ट ऑफ ऑल कर्तव्य यह है कि वो भगवान की शरण में जाए। सवे पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्ति अदुक्षजे। आपने अगर अपने सारे कर्तव्यों को पालन कर दिया लेकिन ये कर्तव्य यदि पालन नहीं किया, यदि भगवान की शरण में नहीं गए, तो फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अगर आपने अपना यह कर्तव्य पूरा नहीं किया, फिर चाहे आप कोई भी वर्ण आश्रम में हो और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अपने वर्ण और आश्रम को निभाए, चार ही वर्ण आश्रम यदि कृष्ण नहीं बजे, यदि आपने कृष्ण का भजन नहीं किया, स्वकर्म करीते, आपने भले अपने कर्मों को बहुत ही सोफेस्टिकेटेड तरीके से किया हो, एकदम परफेक्टली किया हो, सारे कर्तव्यों को पूरा कर लिया हो, यदि कृष्ण ना ही बजे, लेकिन अगर कृष्ण का भजन नहीं किया, स्वकर्म करीते से रवरवी परिमजे, फिर भी तुम सबसे बड़े अपराधियों और नरक में जाने के योग्य हो। शास्त्र यहाँ तक कहता है कि जीव का सबसे बड़ा अपराध भगवान कि शरण ग्रहण न करना है। तो भगवान कहते हैं यो माम अजमन आदिम, जो मुझे जान लेता है कि मैं अजन्मा हूँ, अनादि हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही पूजन्य हूँ, वह असम्मूढ़ है, वह मोहरित रहित है, खाली जान लेता है। देखो भगवान कितने करुणामयी हैं। भगवान ये नहीं चाहते कि भले आप अना जीवात्मा मेरे लिए बहुत बहुत तपस्याएं करे, बहुत बहुत योग करे, बहुत बहुत यज्ञ करे, बहुत बहुत कठिन कठिन तपस्याएं करे, भगवान ने कहा नहीं, मैं तो खाली ये बोल रहा हूँ कि आप खाली जान लो। वेत्ती, वेत्ती का मतलब है खाली आपको, आप इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि कृष्ण भगवान है, और इस बात को एक्सेप्ट करने से भी भगवान का कोई लाभ नहीं होगा। भगवान ने पहले ही बता दिया कि देखो मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हित काम्य है, वक्षामि हित काम्य, तुम्हारा भला चाहता हूँ। जीव का कल्याण इसी में है कि वो वास्तव में भगवान को जान ले कि भगवान ही, कृष्ण ही समस्त लोकों के महेश्वर है। और भगवान कहते हैं वेत्ती लोकमय, जो इतना जान लेता है वो मर्त्येषु है, बार बार मरने वाला है, लेकिन सर्व पापे प्रमुच्यते। ये बहुत बड़ा आश्वासन है, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि भगवान ने इस भौतिक जगत में हमारे समस्त पापों को खत्म करने का एकदम सरल रास्ता बताया। क्या प्रॉब्लम है बताओ इसमें, कि हम ये जान लें कि कृष्ण अजन्मा है और ये कोई भगवान जो है वो अपनी अपना जैसे स्टेटस बढ़ाने के लिए, भगवान तो भगवान है, उनका महत्व जो है, उनका ऐश्वर्य कभी कम नहीं होगा। जैसे कोई अंधा व्यक्ति हो जो सूर्य को नहीं देख सकता है और ये कहे कि सूर्य नहीं है, तो फिर उससे सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है नहीं पड़ता, सूर्य तो सूर्य है, सूर्य के अंदर तो प्रकाश है, उसका प्रकाश तो कभी समाप्त नहीं होता। और इस भौतिक जगत में एक जीव को जो भी दुख मिलते हैं, जो भी कष्ट मिलते हैं, वो सब
उनके अपराधों के कारण ही तो मिलते हैं। हम नरक में जाते हैं तो अपने अपराधों के कारण जाते हैं, और भौतिक जगत में जब जन्म लेते हैं तो भी कोई बहुत ज्यादा गरीब होता है, कोई बहुत ज्यादा दुखी होता है, किसी का शरीर स्वस्थ नहीं होता है, या किसी के फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, किसी की फिजिकली कोई प्रॉब्लम होती है। यानी जो भी भौतिक जगत में जितने भी दुख हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के दुख हैं, वो क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि हमने अपराध किए हैं, है ना। पापों के कारण ही हमें दुख मिलते हैं। लेकिन सर्व पापाय प्रमुच्यते, सारे पाप जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे। पाप समाप्त हो गए मतलब कष्ट समाप्त हो जाएंगे। केवल इतना जान लेने पर, भगवान कहते हैं जो केवल इतना जान लेता है उसका कितना कल्याण होगा, जब वो जान लेगा कि मैं अजन्मा हूँ, अनादि हूँ, मैं ही समस्त लोकों का महेश्वर हूँ, तो फिर उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। और जैसे ही उसके पाप नष्ट हो जाएंगे, उसके दुख समाप्त हो जाएंगे। और फिर भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरण व्रजा, मैं सबसे बड़ा शेल्टर हूँ, मैं सबसे बड़ी शरण हूँ। पहले भगवान ने कहा गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम स्थल, मैं ही सबकी गति हूँ, वास्तविक लक्ष्य में हूँ, वास्तविक शरणस्थली में हूँ। और जो मेरी शरण में आ जाता है, अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो, ऐलान कर दिया, घोषित कर दिया कि मैं उसे समस्त पापों से मुक्त करूंगा, अपराधों की सजा देने वाला भी मैं ही हूँ, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है, जो मुझे अजन्मा मानता है, अनादि मानता है, समस्त लोकों का महेश्वर मानता है, उसके समस्त अपराध समाप्त कर देता हूँ, और उसे इस भौतिक जगत के जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा कर अपने आध्यात्मिक, अपने आनंदमय सच्चिदानंद जगत में बुलाता हूँ, जहाँ पर उसे कभी भी जन्म मृत्यु दुख और रोग नहीं सताते। तो हम सबको चाहिए कि हम भगवान श्री कृष्ण को अजन्मा माने, अनादि माने, और उन्हीं को केवल उन्हीं की शरण में जाएं, ताकि हमारे सारे पाप समाप्त हो जाएं और हमें भगवत प्राप्ति हो सके, भगवत प्रेम की प्राप्ति हो सके, जो कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं, जो कि है कृष्ण प्रेम।